जहां कहीं भी आपके फोड़ा हो गया हो उसको चीरा लगवा दीजिए और मवाद को निकाल दीजिए, अन्यथा वह आपको सड़ा देगा, आपके परलोक को सड़ा देगा, आपकी बीबी को सड़ा देगा, आपके बच्चों को सड़ा देगा, आपके खानदान वालों को सड़ा देगा,
सबको सड़ा देगा। आप यकीन रखना,
आपने अनावश्यक दौलत इकट्ठी करके रखी हो तो इसको निकाल देना और फोड़े के तरीके से फोड़कर खत्म कर देना।
मित्रों, जनता का शिक्षण करने के लिए आपको जो तप सिखाता हूँ, योगाभ्यास सिखाता हूँ, वही यहाँ से आरंभ करता हूँ। असली तप और असली योगाभ्यास वही है।
आप तो बार बार यही पूछते हैं कि महाराज जी,
नाक में से रस्सी निकालना सिखा दीजिए,
कान में घंटी बजाना सिखा दीजिए और जय शिव ओंकारा सिखा दीजिए और गायत्री का जप करना सिखा दीजिए। बेटे, मुझसे खेल खिलौना क्यों पूछता है? जो असली योगाभ्यास है उसे क्यों नहीं पूछता?
असली तपश्चर्या क्यों नहीं सीखता, जिसमें तुझको पसीना आएगा और जिसमें तेरी ईमानदारी का इम्तिहान लिया जाएगा?
वहाँ नहीं घुसना चाहता और यह खेल खिलौना करना चाहता है?
नहीं गुरुजी,
हम तो ऐसा ही करेंगे, नाक में से पानी पी लिया करेंगे और मुंह में से निकाल दिया करेंगे। बेटे, यह तो अपने आप हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
नहीं महाराज जी, हमको नाक में से पानी निकालना सिखाए, भगवान से मिलना सिखाए। बिल्कुल पागल आदमी है, लोग मोह से मुक्ति पर मिलते हैं भगवान। मित्रों,
नाक में कोई भगवान नहीं रहता है। नहीं साहब, नाक में से प्राणायाम करना बता दीजिए, भगवान मिल जाएगा।
बेटे, तू बिल्कुल पागल आदमी है।
नाक में तेरा भगवान रहा होता तो चल मैं यह भी बता देता, पर तेरी नाक में तो गंदगी भरी पड़ी है। तुझे कभी जुकाम हो जाए, छींक आ जाए तो देख लेना, भगवान है कहीं? कहीं नहीं है, केवल कफ है। जुकाम हो जाने पर ढेरों कफ निकलता है, वही तुझे मिल जाएगा। नाक में से बहुत प्राणायाम करेंगे तो भी भगवान नहीं मिलेगा।
नहीं बेटे, भगवान नहीं मिलेगा। भगवान कब मिलेगा?
कहाँ मिलेगा?
भगवान वहाँ मिलेगा जबकि हम दो इम्तिहानों में पास होते चले जाएंगे।
कौन कौन से? लोभ और मोह के इम्तिहान में।
आपकी सारी शक्ति यही दो राक्षस खा जाते हैं,
वे कुछ भी बचने नहीं देते।
मित्रों,
भगवान का भजन करने का मन आपका कहाँ है? मन हो तो न भगवान के भजन में लगे। आपके पास जब मन ही नहीं है तो भगवान के भजन में कैसे लगेगा? मन तो आपका गुलाम हो गया है, गिरवी रखा हुआ है, लगेगा कैसे?
लगेगा किसके पास?
आपका भगवान कौन है? कोई आपका रिश्तेदार है भगवान? साला है, भगवान आपका कोई नहीं है। भगवान तो आपके लिए वह साधन है जिससे आप अपना उल्लू सीधा करा लें। आपके लिए वह शिकार खेलने की मछली जैसे है।
आप उसको पकड़ लें, उससे वैकुंठ ले लें, स्वर्ग ले लें, उससे मुक्ति ले लें, उससे मनोकामना पूरी करा लें, उससे चाहे जो ले लें।
भगवान आपका कौन है?
भगवान आपका ख्वाह मख्वाह है।
उसके लिए आपका मन कैसे लग सकता है?
आपका मन नहीं लग सकता। इसलिए मित्रों,
आपको अपने भीतर कशिश पैदा करनी है और यह कशिश मोह को त्याग करके पैदा करनी है।
मित्रों, जब हम चलने लगे तो हमारे पास 80 बीघा जमीन बाकी रह गई थी।
हमारे खानदान वालों ने कहा कि अब तो आप हिमालय जा रहे हैं। क्या हमेशा के लिए जा रहे हैं? हाँ, अब नहीं आएंगे।
हाँ,
तो फिर 80 बीघे जमीन की लिखा पढ़ी कर जाइए, हमको और अपने घर वालों को, खानदान वालों को दे जाइए। मैंने कहा कि यह गलती मैं नहीं कर सकता।
अगर मेरे खानदान वाले, मेरे घर वाले, मेरे बेटी बेटे अपाहिज होते, लूले होते, लंगड़े होते, काने होते, जिनसे चला नहीं जाता, तो मैं इनको दे जाता। अगर बच्चे छोटे होते और जिनके पालन करने की जिम्मेदारी और कर्तव्य मेरा होता तो मैं इनको दे जाता।
मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, M0A0 पास कर लिया है, काम से लग गए हैं, इनकी शादियां हो गई हैं। अब इनका कोई हक मेरे ऊपर नहीं रहा और कोई ड्यू नहीं रहा।
अब इनका कोई अधिकार नहीं रहा। मित्रों,
जो चीजें मेरे बाप दादों ने और मेरे बुजुर्गों ने और मैंने कमाई, जिस पैसे को लोकमंगल के लिए समाज को देकर मैं कितना लाभ उठा सकता हूँ, वह मैं आपको दे दूंगा।
मैं तो नहीं देता।
खानदान वालों ने, साले और रिश्तेदारों ने मुझे धमकी दी। लड़के और लड़कियों के ससुराल वालों ने कहा कि यह कानूनी हक है और जमीन आपके बुजुर्गों की है, अतः सबका अधिकार है। मैंने कहा कि कानून तो चालाकों का बनाया हुआ है, चोरों का बनाया हुआ है। बाप की कमाई को बेटे को खाना चाहिए, यह चोरों का कानून है और चालाकों का कानून है। क्यों खाना चाहिए? मैं गवर्नमेंट के इस बात के पक्ष में हूँ और सही समझता हूँ कि उसे मृत्यु टैक्स वसूल करना चाहिए। मैं तो यह कहता हूँ कि ऐसा टैक्स वसूल करना चाहिए कि जिसके नाबालिग छोटे बच्चे रह जाएं, उनकी तो बात अलग है।
उनका तो उस हिसाब से पढ़ने लिखने का प्रबंध करना चाहिए।
इसके बाद में जो कुछ भी बच जाता है सबका सब जब्त कर लेना चाहिए। लोकमंगल के लिए बने कानून।
मित्रों,
अगर मुझे हुकूमत सौंप दी जाए तो मैं यही कहूंगा कि न्याय यही है, इंसाफ यही है कि जो आदमी मर गया है और जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है और वह संपत्ति को अपनी औलाद के लिए छोड़कर मर गया है, तो उसका एक पैसा मत दो।
उसका सारा पैसा जब्त कर लो। वह सारा पैसा गवर्नमेंट को दे देना चाहिए। उसकी औलाद को कानी कौड़ी नहीं मिलनी चाहिए।
पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कानून तो चलेगा नहीं। लेकिन अगर इंसाफ की बात हो तो वही यही है कि वह सारा का सारा धन लोकमंगल के लिए खर्च करना चाहिए और समाज के लिए खर्च होना चाहिए।
मित्रों,
अगर आपको अपने अंदर कशिश उत्पन्न करनी हो तो वहां से करना चाहिए जहां से आपके लोभ और मोह पर अंकुश लगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो 80 बीघे जमीन थी उसके लिए मेरे खानदान वाले एक ओर बैठे रहे और हरेक आदमी नाराज बैठा रहा, गुस्से में भरा बैठा रहा। मैंने हरेक की ओर आंख उठाकर देखा और कहा कि आपकी नाराजगी आपको मुबारक, मैं आपकी नाराजगी से पिघल नहीं सकता। आप मेरी संतान हैं और मुझे संतान के लिए फर्जों और उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों का ज्ञान है। अपने कर्तव्यों, फर्जों और उत्तरदायित्वों को पूरा करने के अलावा आपको प्रसन्न करने के लिए, आपको खुश करने के लिए, आपकी खुशामद करने के लिए और औलाद की मर्जी के मुताबिक चलने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ।
मैं कतई नहीं करूँगा।
आप सब नाराज हो जाएं तो भी नहीं, लोग अभी तक नाराज बैठे हुए हैं।
कौन? जिनको सपने में भी रास्ता नहीं मिला।
मैंने तो 80 बीघे जमीन हाईस्कूल के नाम कर दी। अब वहाँ माताजी के नाम का हाईस्कूल बना हुआ है, कॉलेज बना हुआ है।
उसी स्कूल में हरिजन आदिवासियों की लड़कियों ने इंटरमीडिएट पास कर लिया,
जबकि हमको अपने गांव से 7 मील दूर मिडिल पढ़ने के लिए जाना पड़ता था।
मित्रों, हमारा छोटा सा गांव है और छोटे से गांव में केवल प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था थी। मिडिल गांव से बाहर जाकर पास करना पड़ता था। सोमवार के दिन सवेरे 7 मील दूर जाते थे, सवेरे 4 बजे उठकर 9 बजे पहुंचते थे, शनिवार के दिन फिर शाम को 4 बजे चलते थे और रात को 8-9 बजे घर आ पाते थे। हमने सारी की सारी मिडिल की पढ़ाई वहां पढ़ी थी। हमारे गांव के सारे लोगों में से 2-5 लड़के ही थे जिन्होंने मिडिल तक शिक्षा पाई थी। बाकी सारे के सारे बच्चे प्राइमरी पढ़ने के बाद में स्कूल छोड़ गए थे।
अब उसी गांव में मैट्रिक और इंटरमीडिएट कॉलेज है जहां 50-60 बच्चियां तो हर साल मैट्रिक कर ही लेती हैं। लड़कों का तो कहना ही क्या, लड़कों में तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने मैट्रिक पास न कर लिया हो, B0A0 पास न कर लिया हो। अब तो कॉलेज की व्यवस्था हो रही है।
शिक्षा का प्रसार न केवल आवश्यक है वरन अनिवार्य भी है।
लोग अभी भी कहते हैं कि गुरुजी का अकेला बेटा नहीं है वरन सारा गांव उनका बेटा है।
उनकी अकेली बेटी नहीं है वरन सारे गांव की बेटियां उनकी बेटियां हैं, जिनको पढ़ाने लिखाने आदि की सारी व्यवस्था करने का इंतजाम कर दिया।
हमारा प्यार है इस परिवार का आधार।
मित्रों,
यह क्या है? यह लोभ और मोह है जो मैंने अपने छोटे से खानदान में से खींचा और छोटे से खानदान में से निकाला। मेरा वही मोह प्यार के रूप में बदलता हुआ चला गया। यह प्यार कितना बड़ा आपने देखा नहीं। लड़कियां जब यहां से विदा होती हैं तो फूट फूट कर रोती हैं और 5-5 दिन 7-7 दिन तक हमको तंग करती हैं। लड़कियां आपस में हिल मिलकर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि आपने हमको बेकार बुलाया, इससे तो अच्छा था कि आप हमको नहीं बुलाते। नहीं माताजी, आपको छोड़ने में हमको बड़ा कष्ट होता है। लड़कियां जाती हैं, उनके माँ बाप ले जाते हैं और हमको भेजना भी पड़ता है।
जिंदगी भर सारी लड़कियों को हम कैसे रखेंगे? उनको घर जाना चाहिए और दूसरा काम करना चाहिए। वही लड़कियां यहां बैठी रहेंगी तो नई कहां से आएंगी?
हमारे पास इतनी जगह कहां है, इसलिए हम उनको विदा कर देते हैं।
मित्रों,
जब उनकी विदाई होती है तो उनकी आंखों में किस तरीके से आंसू निकलते हैं, जैसे सगी बेटियां रोती हैं उसी तरीके से विदा होती ये लड़कियां रोती हैं। कितनी कशिश है।
मित्रों,
लाखों मनुष्यों से हमारा मोह जुड़ा हुआ है और हमारा प्यार जुड़ा हुआ है। मोह और कशिश के बंधनों से हमने आपको बांध रखा है। हमारे पास और कोई चीज नहीं है, विद्या हमारे पास नहीं है। हम आपकी मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ कहाँ हुए? आपकी कठिनाइयों को दूर करने में, आपको वरदान और आशीर्वाद देने में कहाँ समर्थ हो सके? आपकी दिक्कतें जहाँ की तहाँ हैं और आपकी कठिनाइयां जहाँ की तहाँ हैं।
हमारा वरदान आपके क्या काम आया?
क्या आप वरदान की वजह से आए हैं? वरदान की वजह से आप नहीं आए, क्यों आते हैं आप? आप हमारे प्यार की कशिश से खींचे हुए चले आते हैं।
मित्रों,
प्यार की यह कशिश आप पैदा कर सकते हैं। हाँ, आप पैदा कर सकते हैं। शर्त केवल यह है कि आपका जो प्यार है वह छोटे से खानदान के बंधनों में इस कदर जकड़ा हुआ पड़ा है जिसने आपकी मशक को बांध दिया है। आप उस दायरे में से निकलिए और उसको आगे बढ़ाना शुरू कीजिए।
फिर देखिए कि आपको किस तरह का प्यार मिलता है,
किस तरह की कशिश आपके भीतर पैदा होती है। जहां कहीं भी आप जाते हैं, लोग आपके पीछे पीछे लगे हुए चलेंगे और आगे आगे लगे हुए चलेंगे।
मित्रों,
आपको लोगों का मन बदलना है, असल में आपको उनके दिमाग को नहीं बदलना है।
दिमाग को बदलने का काम तो हमने कितने वर्ष से कर लिया।
अखंड ज्योति में हमने कितने लेख छापे हैं और युग निर्माण योजना में लेख छापे हैं और कितनी पुस्तकें छापी हैं। हमसे ऐसी कौन सी बात बची है जो हमने छापी नहीं है?
हमसे पहले रामायण वाले ने भी छाप दी थी, गीता वाले ने उससे भी पहले छाप दी थी और भागवत वाले ने उससे पहले भी छाप दी थी।
वो सारी की सारी नसीहतें और शिक्षाएं जिनको आप वाणी के द्वारा देने के लिए चले हैं मित्रों, उसमें कानों को आनंद आ जाएगा, आंखों को आनंद आ जाएगा और आपको जानकारियां मिल जाएंगी। हमारा दिमाग कहाँ खराब हुआ है? हमारा तो ईमान खराब हुआ है। हम आज भी आदमी के ईमान को बदलना चाहते हैं। दिमाग को हम कब बदलना चाहते हैं? आप किसी से भी मालूम कर लीजिए, दिमाग तो बड़ा चालाक है। आप जैसा निषेध करने को तैयार हैं, वह इससे भी ज्यादा निषेध करने को तैयार है। उसे नसीहतों की जरूरत नहीं है, शिक्षाओं की जरूरत नहीं है, प्रवचनों की जरूरत नहीं है, वरन उन तत्वों की जरूरत है जो आदमी को प्रभावित कर सकते हैं, आदमी के ऊपर बल डाल सकते हैं और आदमी के ऊपर जोर डाल सकते हैं।
मित्रों,
वह कहाँ से आएगा? वह कॉपी करने के मादे से आएगा। मनुष्य के अंदर एक विशेषता भरी पड़ी है, वह दूसरे आदमियों की नकल करना जानता है। वेश्या अपनी जिंदगी में सैकड़ों हजारों भलुए पैदा कर देती है। क्यों पैदा कर देती है? इसलिए पैदा कर देती है कि उसका जो विचार है वही उसकी क्रिया भी है, उसके विचार और क्रिया दोनों मिले हुए हैं। वह जो भी गंदा या अच्छा विचार करती है, क्रिया भी उसी के अनुरूप करती है। विचार और क्रिया दोनों के सम्मिश्रण का परिणाम यह होता है कि वह अपनी जिंदगी में 100 भड़ुए पैदा कर लेती है। जुआरी अपनी जिंदगी में 100 जुआरी पैदा कर लेता है, शराबी अपनी जिंदगी में 100 शराबी पैदा कर लेता है, लेकिन एक भगत और एक पंडित और एक गुरु और एक ज्ञानी 100 भगत और 100 ज्ञानी पैदा नहीं कर सकता। क्या वजह है? आपने कभी देखा या विचार किया? उसकी एक ही वजह है कि वे ज्ञानी, गुरु और पंडित केवल दिमाग और जबान तक ही अध्यात्म को सीमित रखते हैं, जीवन में उसे प्रवेश नहीं करने देते, हृदय में प्रवेश नहीं करने देते, क्रिया में प्रवेश नहीं करने देते, अंतःकरण में आने दे अध्यात्म को।
मित्रों,
ये कहते हैं कि अगर अध्यात्म हमारे हृदय में प्रवेश कर गया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी और मेरे लोभ एवं मोह में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए हम इन दोनों चीजों को जबान की नोक तक सीमित रखेंगे। जबान की नोक से गीता का पाठ करेंगे, रामायण का पाठ करेंगे, जबान की नोक से उपदेश करेंगे, बस इसे हम केवल कान तक सीमित रखेंगे। हम भागवत सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे और कथा कीर्तन सुनेंगे, बस इससे आगे नहीं,
बस दिमाग में जानकारियां जमा करेंगे।
फलाने स्वामी जी ने कौन से वेद का भाषण किया था और उसके बारे में क्या कहा था, उसका मंत्र क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, जीव क्या होता है? नहीं साहब,
हम दिमाग का शिक्षण करेंगे। मित्रों,
यह दिमाग की कोई शक्ति नहीं है, यह कानों की कोई शक्ति नहीं है और आंखों की कोई शक्ति नहीं है। शक्ति जो रहती है वह अंतःकरण में रहती है और आपको अपने अंतःकरण में अध्यात्म को प्रवेश कराना पड़ेगा।
वानप्रस्थ जीवन का यही उद्देश्य है और यही शिक्षण है। मित्रों,
आपकी दिशाएं हमने यहां से बना दी हैं, लक्ष्य हमने यहां से बना दिया है। हम कुछ कह नहीं सकते कि आप इसको कब तक पूरा करने में समर्थ होंगे। हमें नहीं मालूम है कि आपकी परिस्थितियां क्या हैं,
आपके पारिवारिक उत्तरदायित्व क्या हैं
और आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। उनको हम छुड़ाना नहीं चाहते और आपको मजबूर करना नहीं चाहते। हम यह चाहते हैं कि आप यहां से वैरागी होकर जाएं,
आप मन से वैरागी हो जाएं।
परिस्थितियां जब आपको इसके लिए इजाजत दें कि हम पूरे वैरागी होने की परिस्थिति में हैं, तब आप अपना लक्ष्य यही रखना कि हम व्यक्तिगत जीवन नहीं जिएंगे, व्यक्तिगत सुखों की आकांक्षा के लिए नहीं जिएंगे।
हमारी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं नहीं है, हमारी व्यक्तिगत सुविधाएं नहीं है, व्यक्तिगत हमारी कोई मनोकामनाएं नहीं है, व्यक्तिगत तमन्नाएं हमारी नहीं है।
हमने अपना व्यक्तिगत जीवन खत्म कर दिया और अपना सामाजिक और सामूहिक जीवन शुरू कर दिया।
मित्रों,
अभी आप ठीक हैं, छोटे से परिवार की जिम्मेदारियों के बंधन में बंधे हुए हैं,
आप इसे निभाना।
मैं आपको इजाजत देता हूं कि आप इसे निभाएं। मैं उन आदमियों में से नहीं हूं जो बच्चों को बिलखते हुए, अपनी स्त्रियों को बिलखते हुए और घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर बाबा जी हो जाने के लिए कहूंगा।
आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना।
कल तक पूरी करना, परसों तक पूरी करना, साल भर में पूरी करना, 15 साल में पूरी करना। जब परिस्थितियां आपको इजाजत दें कि अब आप पूरा वक्त समाज के लिए लगा सकते हैं, लोकमंगल के लिए लगा सकते हैं, संस्कृति के लिए लगा सकते हैं, देश के लिए लगा सकते हैं, धर्म के लिए लगा सकते हैं, तो आप लगाना। अगर वे परिस्थितियां कल आती हैं, तो परसों का इंतजार मत करना। अगर परिस्थितियां आपको 10 साल तक ठहरने को मजबूर करती हैं, तो आप 10 साल से कम 15 साल में करने की जल्दबाजी मत करना। आप समय से करना और परिस्थितियों के अनुरूप अपने बंधनों को ढीला करना और अपना समस्त समय लोकमंगल के लिए और समाज कल्याण के लिए खर्च करना।
मित्रों,
यह काम तो आप अभी से ही करना और आज से और यहीं से करना कि अपने लोभ और मोह की जंजीरों को कम से कम करना और ढीला करना। इन्हीं ने आपको कषाय और कलमशों के बंधनों में बांध कर रखा है। इन्हीं ने आपके प्रभाव डालने की शक्ति को, आपके वर्चस्व को और आपके आत्मबल को अवरुद्ध करके रखा है। लोभ और पाप की जड़ यही है। संसार में जितने भी लोभ और पाप दिखाई पड़ते हैं, जितने भी अनाचार और बंधन दिखाई पड़ते हैं, वे इन दोनों के ही पैदा किए हुए हैं, तीसरे के पैदा किए हुए नहीं हैं।
जीवन को तपमय बनाएं, ज्ञानमय बनाएं। मित्रों,
लोभ और मोह इन दोनों की जड़ें आप अपनी मनोभूमि से काटना और इनके विरुद्ध रोज जद्दोजहद करना।
रोज आत्मपरीक्षण करना, रोज अपनी समीक्षा करना,
रोज अपने आप से सवाल पूछना कि अपने लोभ और मोह के लिए कोई अनावश्यक शक्तियां तो खर्च नहीं होती। सत्संग के लिए आपकी शक्तियां खर्च होती हों, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और आपको इजाजत देता हूं कि आप अपने कर्तव्य के लिए, जिसमें शरीर का कर्तव्य भी शामिल है, घर का कर्तव्य भी शामिल है, उसे अवश्य करना, वह भी लोकमंगल है। लेकिन जो आपकी शक्तियां जिनमें आपके दिमाग की शक्ति है, अकी की शक्ति है, आपके मन की शक्ति है और प्रभाव की शक्ति है, अगर वह धन के लिए और लोभ के लिए खर्च होती है, तो आप जितनी जल्दी हो सके और जितनी मुस्तैदी से संभव हो सके और जितनी हिम्मत के साथ हो सके, उनको ढीला करना और काटना।
अपने जीवन को तपमय बना देना और योगमय बना देना, भक्तिमय बना देना और ज्ञानमय बना देना। ज्ञानमय बनाने के लिए मित्रों,
आपको वही करना चाहिए जो मैंने अपनी जिंदगी में किया और प्रत्येक संत ने किया, और वही आपको करना पड़ेगा। आप इसकी तैयारी करना। यहाँ से जिन जिन शाखाओं में हम आपको भेजें, जहाँ आपको भेजें, वहाँ आप तेजस्वी हो करके जाया, प्रभावशाली हो करके जाया, वैसे हो करके जाएं जैसे कि बुद्ध के शिष्य सारे विश्व में गए थे। वे जहाँ भी गए थे, वहीं बौद्ध धर्म की पताका फहराते हुए और उसकी स्थापना करते हुए गए थे।
यह प्रभाव उनकी वाणी का नहीं था, उनकी विद्या का नहीं था, वरन यह प्रभाव उनके चरित्र का था।
आदमी का आध्यात्मिक चरित्र इन दो बातों पर टिका हुआ है, आदमी का लोभ और मोह किस कदर तक उस पर हावी है। अपने आप का इम्तिहान आप भी ले सकते हैं। बाहर वाला क्या जान सकता है कि आपकी परिस्थितियां क्या थीं और आप क्या कर सकते थे।
मित्रों,
अगर आप दो कामों में समर्थ हो सके, तो मैं आपको योगी कहूंगा और आपको तपस्वी कहूंगा। अगर आप यह दो काम न कर सके और आपने मंत्र, तंत्र और उपासना, भजन और कथा कीर्तन जान लिया और उसे ही सब कुछ मान लिया, तो मैं आपको सिर्फ पुजारी कहूंगा। पुजारी का प्रभाव हो भी सकता है और आपको सम्मान भी मिल सकता है और आपके अहंकार की पूर्ति हो भी सकती है। लेकिन जो काम आप करना चाहते हैं, अपने आप को शांति देने का, आत्मनिर्माण करने का और सारे विश्व का निर्माण करने का, वह तभी होना संभव है जबकि आप लोभ और मोह के कुंभकर्ण को परास्त करने में समर्थ हो सकें।
आज की बात समाप्त। ओम शांति।